दिन भर तारीख 22 दिसंबर दिन गुरुवार, मैं हूं विनीत खरे। बर्लिन ट्रक हमले के सिलसिले में 24 वर्षीय ट्यूनिशियाई अनीस आमरी की यूरोप भर में खोज जारी। इस ताजा हमले से लोगों की निजी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा जानेंगे आगे। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को सालों बाद भी भारतीय नागरिकता का इंतजार।
हाथ जोड़कर विनती करके सरकार को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को कह रहे हैं, हमको सिटीजनशिप दे दो।
हावड़ा के धूलागढ़ में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद लोगों में डर। साथ ही आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। जर्मनी के बर्लिन में बीते सोमवार को कई लोगों पर लॉरी चढ़ा देने वाले ट्यूनीशिया के संदिग्ध की तलाश जारी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अनीस आमरी नाम के संदिग्ध की उंगलियों के निशान लॉरी के दरवाजे पर पाए गए हैं। पुलिस ने बर्लिन और डॉर्टमंड में छापे की कार्रवाई की है। सीमा स्थित शरणार्थी शिविरों में तलाशी ली गई है। संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए पूरे यूरोप में वारंट जारी कर दिए गए हैं। आमरी को हमले के बाद से नहीं देखा गया है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इराक के मोसूल में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने इराकी सेना के खिलाफ आत्मघाती कार हमले किए हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक मोसूल के पूर्व में 3 कार बम धमाके किए गए हैं। इन हमलों में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। जवाबी कार्रवाई में इराक ने लड़ाकू विमानों के जरिए चरमपंथियों के ठिकाने पर बम बरसाए। संघर्ष बढ़ने के बाद आम लोग इस इलाके से निकलने की कोशिश में हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टीफान दे मिस्तूरा ने कहा है कि पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने के बाद वहां शांति बहाली के लिए प्रयास होना चाहिए। पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम अभी जारी है। रेडक्रॉस के मुताबिक ये अभियान शुक्रवार को भी जारी रहेगा। मिस्तूरा ने जनेवा में कहा कि अभियान पूरा होने के बाद संघर्ष पर रोक लगाना प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि लंबे समय के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकमत से प्रस्ताव पारित किया। जब हमने अलेप्पो के लिए अपील की थी तब मैंने आपसे कहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद में एकता बहाल होने के बाद ये वक्त है जब हम शांति बहाली के लिए राजनीतिक प्रक्रिया दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये थे स्टीफान दे मिस्तूरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका ने यूरोप में एक बार फिर टैंक तैनात करने का फैसला किया है। इसे रूस के साथ बढ़ते तनाव के तौर पर देखा जा रहा है। 3 साल पहले अमेरिका ने यूरोप से भारी हथियारबंद गाड़ियों को हटा लिया था। यूरोप में अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल बेन होजेज ने बीबीसी को बताया कि अमेरिका एक आर्मर्ड ब्रिगेड की तैनाती कर रहा है। उन्होंने रूस पर सीरिया को प्रशिक्षण के अवसर के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। तुर्की में रूस के राजदूत रहे आंद्रे कार्लोव को मॉस्को में हुए अंतिम संस्कार की रस्में रूस की ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख की अगुवाई में पूरी हुई। अंकारा में सोमवार को उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके पहले विदेश मंत्रालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई जिसमें कार्लोव के परिजन के अलावा राष्ट्रपति पुतिन भी मौजूद थे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सहमति से लिए गए फैसले के मुताबिक आंद्रे कार्लोव को मरणोपरांत हीरो ऑफ रशिया की उपाधि दी गई है। उनकी यादों को सहेजने के लिए हमने कार्यक्रम तय किए हैं। सबसे अहम यह है कि आंद्रे हमारी यादों में रहेंगे, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ये थे सरगेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। वो साल 2013 में दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। अपने कार्यकाल के दौरान जंग के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से मतभेद लगातार खबरों में रहे थे। हालांकि जंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि उनके लिए फैसला चकित करने वाला है। नाइजीरिया की सेना ने कहा है कि बीते एक हफ्ते के दौरान उन्होंने 1,880 आम लोगों को बोको हराम के नियंत्रण वाले इलाकों से बाहर निकाला है। सेना के मुताबिक संविसा के जंगलों में चलाए गए अभियान के दौरान 500 से ज़्यादा विद्रोहियों को पकड़ा गया है। इन आंकड़ों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। हाल के महीनों में सेना ने बोको हराम के नियंत्रण वाले अहम क्षेत्रों पर दोबारा अधिकार हासिल किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिन भर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। बर्लिन में क्रिसमस बाजार में लॉरी से हुए हमले में 12 लोगों की मौत के सिलसिले में वांटेड ट्यूनिशिया के 24 वर्षीय अनीस आमरी की यूरोप भर में खोज जारी है। उनके बारे में जानकारी देने वाले को 1,00,000 यूरो या 70,00,000 भारतीय रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। अनीस आमरी कौन थे, उनका अतीत क्या था, इस बारे में धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है। साल की शुरुआत में उन पर बंदूक की खरीद के लिए डकैती की योजना बनाने के आरोप लगे थे, लेकिन सबूत की कमी के कारण उन पर से निगरानी हटा ली गई। जर्मनी में घुसने से पहले उन्होंने इटली में आगजनी के मामले में 4 साल जेल में बिताए। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों के साथ दिव्या आर्य।
बर्लिन हमले के संदिग्ध ट्यूनिशिया के अनीस आमरी की तलाश में जर्मन पुलिस ने देश भर में छापे मारे हैं। पुलिस ने राजधानी बर्लिन के अलावा बॉर्डर के पास एक रेफ्यूजी सेंटर की भी तलाशी ली। माना जा रहा है कि आमरी इसी सेंटर में रह रहा था। आमरी को हमले के बाद से कहीं भी नहीं देखा गया है और अब पूरे यूरोप में उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। 24 साल के आमरी का घर पूर्वी ट्यूनिशिया एक शहर कैरवा से 80 किलोमीटर दूर है, जहां से वो 2011 में नाव पर बैठकर अवैध रूप से इटली चला गया था। इटली से वो जर्मनी पहुंचा, जहां उसने इस साल अप्रैल में शरण लेने के लिए आवेदन किया। ट्यूनिशिया में आमरी के घर में रह रहे उनके भाई अब्दुल कादिर आमरी ने कहा वो सदमे में है।
हर ट्यूनिशियाई नागरिक की तरह मैंने भी जब ये सुना तो सदमा लगा। हम राजधानी ट्यूनिस में रहते हैं, पर अभी यहाँ हैं। यहाँ हमें पूरी बात का पता तब चला जब हमारे घर पुलिस आई और मेरी माँ को पूछताछ के लिए ले गई।
संदिग्ध के भाई अब्दुल कादिर आमरी के शब्द। इटली में अनीस आमरी एक स्कूल में आगजनी के अपराध में 4 साल जेल की सजा काट चुका है। ट्यूनिशिया में भी बिना उसकी मौजूदगी के उसे जेल की सजा सुनाई गई। दस्तावेजों के मुताबिक वो 6 अलग-अलग नाम इस्तेमाल कर चुका है और 3 अलग-अलग देशों की नागरिकता दिखा चुका है। जर्मन अधिकारियों ने सावधान किया है कि उसके पास हथियार हो सकते हैं और वो खतरनाक हो सकता है। गृह मंत्री राल्फ जेगर ने बताया कि जर्मनी में शरण लेने की उसकी अर्जी ठुकराई जा चुकी थी।
जून 2016 wurde der Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt.
इस साल जून में ही उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी, लेकिन उसे जर्मनी से निकाला नहीं जा सका क्योंकि उसके पास सही पहचान पत्र नहीं था। अगस्त में पासपोर्ट बनवाने की कार्रवाई शुरू की गई और आज कागज हमारे पास पहुंचे हैं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता।
गृह मंत्री राल्फ जेगर के शब्द। उन्होंने माना कि अनीस आमरी पर एक हमले की तैयारी करने के संदेह में नजर रखी जा रही थी। ये संदेह भी जताया जा रहा है कि पिछले साल जर्मनी में दाखिल होने के बाद आमरी किसी इस्लामी संगठन के साथ जुड़ गया था। जर्मनी के बिल्ड ऑनलाइन के मुख्य संपादक जूलियन रिशेल्ट ने बीबीसी से कहा,
Germans haven't really guessed yet the sheer size of this law enforcement screw up.
जर्मनी के लोग अभी ये पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक है। जर्मनी आतंकवाद से कम रूबरू हुआ है, वो अभी भी इस सच्चाई को समझ ही रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की तरफ नहीं सोच रहा, पर मेरा आकलन है कि आने वाले दिनों में इस पर बड़ी बहस होगी।
वरिष्ठ पत्रकार जूलियन रिशेल्ट के शब्द। जर्मन मीडिया के हवाले से आ रही जानकारी के मुताबिक ट्रक पर अनीस आमरी की उंगलियों के निशान मिले हैं। इस बीच वो क्रिसमस बाजार आज फिर से आम लोगों के लिए खुल गया है। जिस हिस्से में लोगों पर ट्रक से हमला हुआ उसे खाली छोड़ दिया गया है। क्रिसमस 3 दिन बाद है, पर मारे गए लोगों की याद में यहाँ संगीत और रोशनी पर पाबंदी है।
ये रिपोर्ट पेश कर रही थी दिव्या आर्य। यूरोप में प्राइवेसी या निजता का बहुत महत्व है, क्या इस ताज़ा हमले से उस पर कोई असर पड़ेगा? यही सवाल मैंने रखा बर्लिन में बीबीसी संवाददाता जावेद सुमरो के सामने।
जैसे कि आपको पता है कि यूरोप भर में इंसानी आज़ादी जो है, जो ह्यूमन राइट्स की बात है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसी हवाले से यहाँ पे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो वे ऑफ लाइफ है, जो तरीका है ज़िंदगी का, वो वैसा ही रहना चाहिए। वो जहाँ जाएँ, जहाँ ख़रीदारी करना चाहें, जहाँ घूमना चाहें, उनको बरकरार रखा जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि उस वे ऑफ लाइफ की वजह से जो सिक्योरिटी है वो उतनी नहीं सख्त हो सकती, ताकि हर जगह पर पुलिस वाले नज़र आए, हथियारबंद लोग नज़र आए। तो इस तरह की बात हो रही है कि कानून में कोई बदलाव लाया जाए ताकि ज़्यादा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए जा सके पुलिस की तरफ से। ये बहुत मुश्किल होगा और ये बहुत बड़ी डिबेट के बाद मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर ये बात ज़रूर सामने आ रही है कि कुछ एमपी जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, वो ये चाहते हैं कि कानून बदले और ज़्यादा कड़े इकदाम किए जाएं लोगों की सुरक्षा के लिए।
चुनाव आने वाले हैं जर्मनी में, उन पर कोई असर पड़ सकता है? एंगेला मर्कल पर कितना दबाव है?
دیکھیں جب سے گزشتہ سال انگلا مرکل نے اوپن ڈور پالیسی کا آغاز کیا تھا شروعات کی تھی اور اس نے تقریباً 1,10,000,000 کے قریب اسائلم سیکرز جو ہیں اور مائیگرنٹس جو ہیں ان کے لیے دروازے کھولے تھے تب سے انگلا مرکل کافی شدید دباؤ کا شکار ہے خاص طور پہ جو انتہائی فار رائٹ کی تنظیمیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ انگلا مرکل کی جو پالیسی تھی اس کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو واپس بھیجا جائے لیکن اب جو ہر اس طرح کے اور واقعات ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی شرنارتھی کوئی نہ کوئی تارکین وطن یا ریفیوجی سامنے آتا ہے جو ان دہشت گردی کے اور چرم پنتھ کے واقعات میں شامل ہوتا ہے تو اس پریشر میں اس دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے جو انگلا مرکل پر ہے لیکن جیسا کہ آپ نے چناؤ کی بات کی تو اب تک جو یہاں پہ سارے اوپینین پولز آئے ہیں ان کے مطابق انگلا مرکل کی ابھی بھی جو اکثریت ہے وہ سپورٹ کرتی ہے.
برلن سے یہ تھے جاوید سومرو.
سال 2016 ختم ہونے کو ہے اور اب نئے سال کا انتظار ہے. سال کے آخر میں بی بی سی آپ کے لیے لے کر آئی ہے کچھ ایسی شخصیتوں سے ملاقات جنہوں نے گزرے زمانے میں ایک الگ مقام حاصل کیا تھا.
سوال ایک ہے کہ اتنے ایوارڈ ملنے سے کیا میں کوئی بیٹر میوزیشین ہو گیا؟
خاندان ہم لوگ کا روہیلا, وہ جو ہے نا وہ روہیلا کس قدر ظالم جفا جی کینا پرور تھا, یعنی وہ لوگ ہیں ہم.
ہمارا اتہاس راجا مہاراجاؤں کا اتہاس رہا ہے, اس میں جو 80% چھوٹ گیا ہے جو حاشیے کے لوگ ہیں, اگر میں ان کی بات کہتا ہوں تو اس کو لے کر وواد ہوتا ہے.
میرے خیال سے 2 سال کی عمر ہوگی, والدین نے ہمارے وہ سہارا دینے کے لیے بلہ ہی دیا ہوگا, کوئی اور چیز نہیں دی ہوگی.
ہماری ورشانت پیشکش میں آپ سے روبرو ہوں گے پنڈت روی شنکر, زہرا سہگل, راجندر یادو اور نواب پٹودی جیسی کچھ اور شخصیتیں 25 دسمبر سے دن بھر اور نمسکار بھارت میں.
بی بی سی ہندی سیوا میں آپ سن رہے ہیں کارکرم دن بھر, ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com پر بھی. میں ہوں ونیت کھرے. بھارت شاست جموں کشمیر کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پشچمی پاکستان سے آئے ہندوؤں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دے گی. اس فیصلے سے گھاٹی میں بھاری پرتکریا ہوئی ہے. شری نگر سے ریاض مسرور.
یہ گھوشنا ہوتے ہی ویرودھی دلوں اور الگاوادیوں نے پھر ایک بار سرکار کے ورودھ مورچہ سنبھالا ہے. آج بھی نردلیہ ودھایک انجینئر رشید نے لال چوک میں دھرنا دیا.
پوری قوم لکھن پور سے لے کے کرنا تک اس کا مطلب اس کی مخالفت کرتی ہے, اور آج ہم جموں کے ڈوگرا بھائیوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ کے مفادات کے بھی خلاف ہے, مہربانی کر کے اس کو آپ ریاست کے مجموعی مفاد میں دیکھیں, ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے.
ورودھ پردرشن میں شامل لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ نرنے کشمیر کی بہت سنکھک چھبی کو بگاڑنے کی اور پہلا قدم ہے.
یہ ٹھیک ہے اگر کوئی مظفر آباد سے آیا ہے ٹھیک ہے, لیکن جو ویسٹ پاکستان سے آئے ہیں ان کو وہی واپس کر دو.
ہندوستان میں 30 ریاستیں ہیں, ان کو کہیں بھی آپ بسا دیجئے. یہ خطہ جو ہے یہ کانفلکٹ زون ہے, یہ ڈسٹربڈ ایریا ہے. یہاں کا ابھی پوری طرح سے مسئلہ کشمیر کا حل ابھی مکمل طور سے نہیں کیا گیا. ہم یہاں راجشماری کرانا چاہتے.
ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ یہاں کی مسلم اکثریت کو ہم مطلب کام کر کے ہندوؤں کی اکثریت یہاں بڑھا دے, تو اسی خلاف ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے کہ یہ ہمیں نامنظور ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا.
غورطلب ہے 1947 میں برٹش انڈیا کے بٹوارے کے بعد دکشنی پاکستان سے لاکھوں ہندو شرنارتھی جموں کے کٹھوا, سانبا اور دوسرے چھیتروں میں بس گئے تھے. بھاجپا کی کئی ورش سے مانگ رہی ہے کہ انہیں ناگرکتا دے کر سامانیہ ادھیکار دیے جائیں. کشمیر میں بی جے پی کے سمرتھن سے محبوبہ مفتی جو ہی مکھیہ منتری بن گئی تو گٹھ بندھن سرکار نے ان شرنارتھیوں کو استھائی ناگرکتا دینے کی پالیسی پر کام شروع کیا اور کل اس سلسلے میں گھوشنا بھی کر ڈالی. الگاوادیوں نے کل جمعے کی نماز کے بعد اس نرنے کے ورودھ میں پردرشنوں کی اپیل کی ہے. یہ سب ایسے سمے ہو رہا ہے جب 5 مہینے تک لگاتار استھرتا کے بعد کشمیر میں عام جن جیون نارمل سی کی طرف لوٹ رہا تھا. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اور بھارت پرشاست جموں کشمیر کی کس کیبنٹ کے فیصلے کے بعد دلی میں رہ رہے پاکستان سے آئے ہندو شرنارتھیوں کی بھی امید جگی ہے جو بھارت کی ناگرکتا لینے کے لیے کئی سالوں سے سرکاری دفتروں کا چکر لگا رہے تھے. دلی کے مجنو کا ٹیلا علاقے میں رہ رہے ان شرنارتھیوں سے بی بی سی سنواد داتا سلمان راوی نے بات کی.
میرے ساتھ اس وقت یہاں پر بستی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں خاص طور پر جو یہاں اس سمودائے کے جو پردھان ہیں سونا داس جی.
ہم 2011 سے آئے ہوئے ہیں, ہم کچھ 2013 میں پہ آئے ہیں, 14 میں پہ آئے ہیں, مگر بہت وہاں تو دکھتے کاٹی سے کاٹی ہم نے سہلے.
سونا داس جی کہہ رہے تھے کہ 2011 سے 2016 ختم ہونے آ رہی ہے, لیکن اب تک ان کی ناگرکتا یہاں پر नहीं हो पाई है।
नागरिकता के लिए हमने तो बहुत धक्के, रात दिन धक्के हम खा रहे हैं, जा रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, जा रहे हैं सबसे मिले हैं, और इतने हम भटक रहे हैं जो कह नहीं सकते हैं।
हमें और भी परेशानियां हैं, जैसे कि अगर वीज़ा हमको नहीं मिलती है तो हम कहीं जाते हैं तो बोलते आप कौन हो, हम बोलते हैं पाकिस्तान से, तो आपके पास क्या प्रूफ है, हमारे पास वीज़ा ही नहीं है, हमारे गवर्नमेंट ने हमारे हाथ में वीज़ा ही अभी तक नहीं दी है।
आपको कोई पहचान पत्र के आप यहाँ रह रहे हैं किसी तरह का कुछ है, या पाकिस्तान के पासपोर्ट तो निकाल रहे
हैं? कुछ बच्चों के जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों के बने हैं, कुछ नहीं बने, बड़े कोई कुछ बने हैं, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ गरीब लोग हैं जिसके खाने की एक एक, एक दिन की रोटी भी नहीं है, तो आधार कार्ड में 100-200 रुपए लगते लगते हैं बनवाने के लिए।
ये बताइए कि कोई सरकारी अधिकारी आता है यहाँ पर देखने के लिए आपका हाल?
आते हैं सर,
जैसे वो लिख लिया कितनी झुग्गी आपकी जली है, कितना क्या हुआ, वैसे करके करते कुछ नहीं,
अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है,
हुआ नहीं
है। इतने दिन 2013 से आ रहे हैं, 14 से आ रहे हैं,
आज 11
से आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा रूट नेसेसिटी के लिए नहीं बनाया गया, ना पासपोर्ट का ऐसा डेट दिया गया कि 5 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू कर दो या पासपोर्ट में वीजा दे दूं। हम ये कहते हैं हमारी नागरिकता हो जाए, नेसेसिटी हो जाए, तो हम कहीं बाहर कमाने के लिए जा सकते हैं, सिर्फ दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जितना हो पक्की झुग्गी बने हमारी।
इसलिए हमको नागरिकता मिलती नहीं है क्योंकि हम गरीब है, लेकिन मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि अदनान समी वहां पैसे कमाने के लिए आया है और हम अपना धर्म बचाने के लिए आया, पहला हक हमारा है, नागरिकता का पहला हक हमारा है, अदनान समी यहाँ आया है वो धर्म पैसे कमाने आया है, वो वहाँ पे
मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जब भी वीजा एक्सटेंड होता है कितने दिनों के लिए एक्सटेंड होता है?
1 साल के लिए।
हम 1 साल के लिए बोलते हैं कि आपकी वीजा एक्सटेंड हो गई, लेकिन हमारे हाथ में नहीं देते हैं वो, हमें कम से कम हाथ में तो दे कि आपके
कैसे पता चलता है कि एक्सटेंड हुई,
बस हो गई।
2013 से जो आए हुए हैं उनकी वीजा बढ़ी हुई है, बाद में 11, 14 में और 15 में जो लोग आए हुए हैं अभी तक उनकी वीजा की बड़ी ना बड़ी वो कोई पता नहीं है, अभी तक आई नहीं है वीजा, उसको 1.5-2 साल हो गए अभी तक।
हम कैसान है, जब 1947 से बंटवारे में जो कटापटी हुई ना, तो बेचारे सारे कैसान है हमारे झुग्गी झुपड़ियों में वहाँ छुप गए थे, वहाँ सारे छुप गए थे, ऐसे मुसलमान थे जो उसी टाइम में ऐसे मुसलमान थे वो अच्छे भी थे, तो अभी हालात वहाँ बिगड़ती जा रही है, तो बेचारे हिंदू लोग बेचारे
कट्टरपंथी बहुत हो रही
है, तो हिंदू परेशान है ही है।
कि आपके वहाँ पर अभी भी लोग हैं जिन्हें आप छोड़ रहे हैं?
हाँ बहुत है, और भाई है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई परिवार में हमारे ज्यादा, उनको दिक्कत आ रही है, उनको अभी वीजा के लिए वो बेचारे परेशान,
अप्लाई कर रहे हैं
वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वीजा मिल जाए तो हम भारत में चले जाए, मगर भारत का ये हाल है, हम हाथ जोड़ कर विनती करके सरकार को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को कह रहे हैं, हमको सिटीजनशिप दे दो,
हमें नागरिकता चाहिए,
नागरिकता चाहिए,
जब अदनान समी को नागरिकता दी है तो हमें नागरिकता दे दो,
जब नागरिकता हमारी मिल जाएगी तो हम बाहर काम कर सकते हैं, खेती में, गांव में, या किसान बन के जमीनों का काम कर सकते हैं, ये रेड़ी पटरी में हमारा गुजारा नहीं चल रहा,
नहीं खरीद सकते।
हम लीगल तौर पे आए हुए हैं, वीजा और पासपोर्ट से आए हैं, हम छुप के नहीं आए हुए, हम घुसपैठिए नहीं है, पासपोर्ट वीजा लगा के भारत का फिर आए हैं हम यहाँ पे।
ये थे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जिनसे बात कर रहे थे सलमान रावी।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
13 दिसंबर को बंगाल के हावड़ा के धूलागढ़ इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें दर्जनों लोगों के घरों को जलाया गया और लूटपाट की गई। ज्यादातर प्रभावित लोग हिंदू हैं। सुरक्षा के कारण प्रभावित इलाके से राजनीतिक पार्टियों और पत्रकारों को दूर रखा गया था। आज पहली बार वरिष्ठ अधिकारी नुकसान का जायजा लेने वहां पहुंचे। हमारे साथी कल्पना प्रधान भी धूलागढ़ पहुंची। मैंने सबसे पहले उनसे इस हिंसा का कारण पूछा।
गांव की जो लोग हैं जिन्होंने इफेक्टेड है तो उनसे पूछा मैंने, उनसे पूछ के पता कि हिंदू का जो एरिया है तो वो मुसलमान को नबी वो जो ईद का जो उनका जुलूस निकला था उस दिन, तो वो नहीं चाहते थे कि हिंदू इलाका दे के उनका जुलूस जाए, और हिंदू लोगों का पता चला कि वो लोग हिंदू एरिया में घुस रहे हैं। बात यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फिर दोनों के साथ बातचीत हुआ, कुछ हाथापाई भी हुआ। उन्होंने बोल रहे थे कि मुसलमान लोगों के हाथ में कुछ बल्लम था, वो लेके मंदिर में कुछ टकराया, मंदिर में कुछ जो होता है गिर गया था कुछ। तो उसके बाद वो 13 से ये स्टार्ट हुआ, फिर एक आदमी वहाँ पे मंदिर की जो कमिटी है उनका मंदिर का पक्ष से बोला कि मस्जिद का जो माइक बज रहा था वहाँ उन्होंने अनाउंस किया सब मुसलमान भाई एक हो जाओ। तो फिर ये 13 गया, 14 को जो दोपहर को वो जहाँ पे हुआ वो बोमाबाजी या लूटपाट सब स्टार्ट हुआ दोपहर को, ऐसे बोल रहे थे गांव के लोग।
तो क्या दिखा आपको कल्पना जी, वहाँ पर हालात कैसे हैं, लोगों से आपकी बात हुई?
उधर लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत सारे घर में कोई लोग नहीं थे, बहुत बुलाने के बाद ही किसी का मुंह दिखा। तो बहुत सारी लड़की लोग ही है, ये एक महिला है जो बोल रहे थे उस दिन उनके ऊपर कैसे अत्याचार हुआ था। वो बोल रहे थे कि वो कुछ लोग आके उनका गला दबाया, उन्होंने ईंट छोड़ा है, बॉम्ब मारा है, फिर उसका हस्बैंड को छुरी दिखाया गले में तरवाल जैसे और गला दबा के रखा था उनका लड़का का। तो पहले जो गांव पड़ता है वो हिंदू लोगों का बास है, वहाँ जितने भी लोग थे मैं उनसे बात किया, बहुत सारी दुकान घर सब जलाया हुआ था मैंने देखा, टूटा फूटा कांच का टुकड़ा पूरा रास्ता में था, बोम फेंका गया था उसका टुकड़ा भी देखा, बहुत रस्सी वगैरह बांधा हुआ था वो भी देखा।
और सिक्योरिटी प्रेजेंस कैसा है?
जी वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है क्योंकि पुलिस की तरफ से वहाँ कैंप बिठाया गया है। मैंने पुलिस लोगों से भी बात किया, 9 ऑफिसर नए जवान के साथ एक सब इंस्पेक्टर भी है वहाँ पे, तो वो किसी को जाने नहीं दे रहे थे कल तक। आज गांव में लोग जा रहे हैं तो इसलिए शायद हमने भी अंदर घुस पाया।
ये थी हमारी साथी कल्पना प्रधान और अब आपकी चिट्ठियां पेशकश वंदना और राजेश प्रियदर्शी की।
आपकी राय, आप सबकी चिट्ठियों के साथ आज मैं हूं वंदना और मेरे साथ हैं
नमस्कार राजेश प्रियदर्शी का भी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, और बहुत सारी चिट्ठियां भी हैं और ईमेल्स भी हैं, तो मैं नीले जो लिफाफे वाली है
अंतर्देशीय इनलैंड जो कि कम आते हैं
उससे शुरुआत करती हूँ। ये भेजा है लक्ष्मण दास शर्मा जी ने, ये हरियाणा से इन्होंने भेजा है मंडलाना। ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब रविवार को बीबीसी सुनना बंद करना पड़ेगा, वैसे तो मैं बीबीसी का फ़ैन हूँ और जिस दिन नहीं सुन पाता उस दिन लगता है कि कोई एक दिन ज़िंदगी से निकल गया है, मतलब निकाल देता हूँ उस दिन को जिस दिन नहीं सुनते हैं।
तब तो रविवार निकल जाएगा आपकी ज़िंदगी से।
जी लेकिन इनको शिकायत ये है कि क्यों हर रविवार को सिर्फ फिल्मी सितारों से ही मुलाकात करवाई जाती है, महीने में एक संडे चलता है लेकिन इसको फिल्मी स्थान न बनाएं।
बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए लक्ष्मण दास जी, और साफ जाहिर होता है कि आप हमारे पुराने और अच्छे श्रोता हैं और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं जो आप ऐसी बात कह रहे हैं कि आपके जीवन से एक दिन निकल जाएगा। अपने जीवन से रविवार को मत निकालिए, और हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जो योजना है कई लोगों से आपकी मुलाकात करवाने की, वो सब फिल्मी सितारे नहीं हैं, उसमें से कुछ लोग लेखन और साहित्य की दुनिया से होते हैं, कुछ लोग खेल की दुनिया के हैं। हम ये कोशिश लेकिन ज़रूर करेंगे कि वो एक अच्छा मिक्स हो, फिल्म स्थान न हो, उसमें हर तरह के लोगों से बातचीत आप सुन सकें।
और अगला पोस्ट कार्ड भेजा है जम्मू से 110 एक्सचेंज रोड, ये हैं AS जम्बाल साहब, कहते हैं कि लगातार सुनता आ रहा हूँ 50 साल से, और सुबह के और शाम के कार्यक्रम मेरे जो टाइम टेबल का एकदम हिस्सा हैं, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेशन इन्होंने वर्ड यूज़ किया होती है क्योंकि रिसेप्शन यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कृपा इसके लिए कुछ करें।
बहुत शुक्रिया जामवाल साहब, आपने अंग्रेज़ी में हमें ये चिट्ठी भेजी है और कितनी खूबसूरत इनकी हैंड राइटिंग है, और इन्होंने साइन करके हमें ये पत्र भेजा है। हमें अफसोस है कि आपको प्रसारण साफ सुनाई नहीं दे रहे हैं, इसमें कुछ भूमिका मौसम की होती है, कुछ दूसरे इंटरफेरेंस होते हैं, हमारे हाथ में जितना हो सकता है हम करते हैं, जहाँ तक हमें मालूम है ऐसी कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसको हम अपनी तरफ से ठीक कर सकें। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको ये प्रसारण ठीक सुनाई देने लगे। सुनना ना छोड़ें, और ख़ास तौर पर ये भी कि जितने साल से आप बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम सुन रहे हैं उतनी मेरी उम्र भी नहीं है, तो इसलिए आपको हम सादर नमस्कार कहते हैं जामवाल साहब को, और अनुरोध करते हैं कि सुनते रहें
जी। और ये जो पोस्टकार्ड है वो ग्राम डिमरा झारखंड से, जिला रांची, आप
जी
खुश हो
मेरे होंगे। मेरे रांची से आया है, मैं रांची का ही रहने वाला हूँ मूलतः
जी। ये कहते हैं कि सब कार्यक्रम बहुत ध्यान लगाकर सुनते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ विशेष नहीं कहा है, लेकिन बोला कि हम लोग किसान लोग हैं, अक्सर काम पर निकल जाते हैं, कभी मौका नहीं भी मिलता है सुनने का, और चिट्ठी कई बार नहीं भी लिख पाते हैं, तो इस बार इन्होंने समय निकाल कर, ये है सुनवा मुंडा, हरिलाल मुंडा
जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका झारखंड से हमें ये पोस्ट कार्ड लिखने के लिए। ये सुनवा मुंडा और हरिलाल मुंडा, इन दो लोगों ने शायद मिलकर ये पत्र हमें लिखा है
जी, किसानी का काम
जी जी। बहुत धन्यवाद पत्र लिखने के लिए।
तो अब कुछ ईमेल्स भी ले लें
जी। बिल्कुल,
बहुत सारे जो ईमेल आए हैं वो आए हैं दुनिया जहां कार्यक्रम को लेकर, जो ये नोटबंदी का मामला है, लेकिन वेनेजुएला का, वहां पे जो नोटबंदी हुई है उस पे जो विनीत खरे ने एक विशेष प्रस्तुति दी, और काफी लोगों के
कल ही प्रसारित हुई,
जी
मैंने
जी
भी सुना।
बिल्कुल, उसमें जंग बहादुर सिंह है, जिशान नैयर है, इन सब ने लिखा कि बहुत ही ज्ञानवर्धक था, बहुत सी नई चीजें पता चली जो इन्हें लगता था शायद भारत में ही हो रहा है, और परिपेक्ष भी अलग अलग है दोनों देशों का
जी। बिल्कुल, हम सबको ये लगा कि ये बहुत ही सामयिक विषय है, क्योंकि ऐसी ही स्थिति दक्षिण अमेरिका के एक देश में अगर मौजूद है तो हमें लगा कि लोगों को अभी भारत में सुनना चाहिए उसके बारे में, ताकि वो दोनों स्थितियों की तुलना कर खुद समझ सकें कि क्या अंतर है और क्या समानताएं
जी। अब समय इतना ही है
जी,
तो जाते जाते पता बता दें
जी। जरूर बता दीजिए,
तो जरूर अपने चिट्ठियां हैं हमें भेजें। पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार, और हमारे साथ राखी शर्मा स्टूडियो में हैं। और सबसे पहले बात आईसीसी अवार्ड्स की, राखी।
बिल्कुल विनीत, भारतीय स्पिनर आर अश्विन को आईसीसी सालाना पुरस्कारों में दोहरी कामयाबी मिली है। उन्होंने आईसीसी का साल 2016 का क्रिकेटर बनने के लिए साल सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी हासिल की, साथ ही उन्हें आईसीसी वर्ष का टेस्ट क्रिकेटर भी चुना गया है। अश्विन गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी हासिल करने वाले तीसरे भारतीय और कुल 12वें खिलाड़ी बने हैं। अश्विन से पहले भारतीय खिलाड़ियों में 2004 में राहुल द्रविड़ और 2010 में सचिन तेंदुलकर ये सम्मान हासिल कर चुके हैं। द्रविड़ के बाद वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें एक ही वर्ष में ये दोनों प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उनसे पहले सिर्फ जैक कैलिस, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा, माइकल क्लार्क, मिचेल जॉनसन और स्टीवन स्मिथ ही एक साल में ये दोनों पुरस्कार हासिल कर पाए हैं। अश्विन ने 14 सितंबर 2015 से 20 सितंबर 2016 के वोटिंग पीरियड के दौरान 8 टेस्ट मैचों में 48 विकेट झटके हैं और 336 रन बनाए हैं। अश्विन ने इस बीच 19 टी20 मैचों में भी 27 विकेट हासिल किए। 2015 के आखिर में अश्विन दुनिया के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज थे और मौजूदा समय में भी वो इस पायदान पर काबिज हैं। और वहीं टेनिस में अखिल भारतीय टेनिस महासंघ यानी आयटा ने आज एक अहम फैसला लेते हुए टेनिस स्टार महेश भूपति को भारतीय डेविस कप टीम का कप्तान घोषित कर दिया है। वो आनंद अमृतराज की जगह लेंगे।
शुक्रिया राखी शर्मा आपका। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। जर्मनी के बर्निल में बीते सोमवार को हुए लॉरी हमले के संदिग्ध अनीस आमरी की जर्मनी समेत पूरे यूरोप में तलाश की जा रही है। इराक के मोसूल में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने इराकी सेना के खिलाफ आत्मघाती कार हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान दे मिस्तूरा ने कहा है कि पूर्वी अलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने के बाद वहां शांति बहाली के लिए प्रयास होना चाहिए। अमेरिका ने यूरोप में एक बार फिर टैंक तैनात करने का फैसला किया है। इसे रूस के साथ बढ़ते तनाव के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की में रूस के राजदूत रहे आंद्रे कार्लोफ को मरणोपरांत हीरो ऑफ रशिया की उपाधि दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। वो साल 2013 में दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को तमाम साथियों के साथ दीजिए अनुमति। स्टूडियो संभाला था शाकिर आलम ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में।